प्यारे साथियों नमस्कार। आज 9 दिसंबर 2016 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 6 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की फरवरी मार्च में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं राहुल कुमार जायसवाल, आप वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं, नितिन त्रिपाठी आप गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हैं, अनूप कुमार सिंह देवघर झारखंड से हैं, ललित कोलांबे जलगांव महाराष्ट्र से हैं, अभिषेक खारड़िया किशनगढ़ राजस्थान से हैं और आशुतोष सिंह दिल्ली से हैं। तो राहुल, नितिन, अनूप, ललित, अभिषेक और आशुतोष आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि मैंने कहा कि आज शुक्रवार है और शुक्रवार होने के कारण मैं कुछ सूचनाएं आप लोगों को देना चाहूंगा जो जनरली मैं हर शुक्रवार को देता हूं। पहली बात तो यह है मित्रों कि अब 3 दिनों तक ये डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा। आप सोच रहे होंगे कि शनिवार और रविवार ही अभी तक डेली ऑडियो नहीं आता था, ये तीसरा दिन कौन सा जुड़ गया? तो मित्रों, आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो छुट्टी पहले ट्यूजडे की थी अब उसको प्रीपोन करके मंडे की छुट्टी घोषित कर दी है, यानी कि मंडे को गजटेड हॉलीडे है। और आपको मालूम है कि गजटेड हॉलीडे पर भी डेली ऑडियो नहीं आता है। तो इस तरीके से 3 दिन शनिवार, रविवार और सोमवार को डेली ऑडियो उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन शनिवार और सोमवार इन दोनों दिन आपको वेबसाइट पर क्लिपिंग्स पढ़ने, प्रेस की क्लिपिंग्स अवेलेबल रहेंगी, यानी कि सोमवार को भी प्रेस क्लिपिंग्स आपको मिलेंगी। प्रेस क्लिपिंग के साथ ही साथ मित्रों, शनिवार को आप जानते हैं कि कुछ एडिशनल चीजें भी होती हैं जिसमें योजना और कुरुक्षेत्र के हिंदी और इंग्लिश के एक एक आर्टिकल होते हैं, साथ ही वीकली क्वेश्चंस भी होता है और स्पेशल ऑडियो गाइडेंस क्लास स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है। तो मित्रों, ये कुछ सूचनाएं थी। अब सूचनाओं के बाद मैं आता हूं आज के न्यूज एनालिसिस पर। फ्रेंड्स, कल के आकाशवाणी के समाचार आपने सुने होंगे। आकाशवाणी के समाचार में एक दो बातें केवल शेयर करने की हैं, एनालिसिस करने की कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जिस पर हम लोग थोड़ी सी विस्तार से बात करेंगे। आपने सुना फ्रेंड, पहली ही खबर थी कि किस तरह से सरकार अब डिजिटल और नगदी रहित लेन देन के बारे में बहुत अधिक कोशिश में है, इसको बहुत ज्यादा वो बढ़ावा दे रही है। आप एड देखिए, आपको टेलीविजन पर एड बहुत ज्यादा दिखाई देने लगे हैं, अखबारों में विज्ञापन देखिए दिखाई देने लगे हैं और प्रधानमंत्री जी ने तो सभी दल से ये रिक्वेस्ट की है कि आप पब्लिक तक जाइए और इसके बारे में लोगों को बताइए। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कल सरकार ने कैशलेस लेन देन के लिए जो 11 घोषणाएं की हैं वे भी अपने आप में मायने रखती हैं। देखिए, जो 11 घोषणाएं हैं इसका पर्पज यही है कि जो एक तरीके से कैशलेस लेन देन करेंगे उनको कुछ इंसेंटिव मिले, यानी कि कोई तो एक ऐसा कारण हो जिसकी वजह से वो कैशलेस लेन देन करने के लिए प्रेरित हो, तो उसके लिए सरकार ने घोषणाएं की हैं। सिविल सर्विस की लिहाज से आपको 11 घोषणाओं को जानना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी दिमाग में कहीं बैक ऑफ द माइंड वो चीजें रह जाती हैं तो आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए। दूसरी जो खबर है दोस्तों, देखा आपने कि राष्ट्रपति जी ने जो संसद में बिल्कुल गतिरोध आ गया है उसको लेकर के अपनी नाराजगी व्यक्त की है, इसके बारे में मैंने कल आपसे बात की थी। सच में लग रहा था कि अब ये कुछ बहुत ही ज्यादा हो रहा है और राष्ट्रपति जी का इस तरह से नाराजगी व्यक्त करना एक मायने रखता है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आपको जो पब्लिक ने चुन करके भेजा है वो संसद को बाधित करने के लिए नहीं, चुपचाप गति बंद करने के लिए नहीं बल्कि वहां डिस्कशन के लिए, डिबेट के लिए भेजा है, तो डिबेट कीजिए। ये यही बात हम लोग कल शेयर कर चुके थे। तो मित्रों ये एक छोटी सी खबर थी। जो तीसरी और जो बड़ी खबर है फ्रेंड्स, वो है हाई कोर्ट के फैसले, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं कहना चाहिए, सॉरी, इसको ध्यान दीजिएगा। हाई कोर्ट ने ये केवल अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, अपनी एक तरीके से यूं कह लीजिए कि टिप्पणी की है, है ना, ये हाई कोर्ट का फैसला नहीं है, ध्यान रखिएगा। हाई कोर्ट ने इसलिए फैसला नहीं दिया है क्योंकि इसी तरह के मामले अभी सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी याचिकाएं मुस्लिम महिलाओं के संगठनों की हैं, जिसमें दो तीन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो तीन तलाक वाला ही मामला कि तीन बार तलाक 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 कहा और तलाक हो गया। दूसरा बहुविवाह प्रथा, मुस्लिम में जो बहुविवाह प्रथा है उसको लेकर के भी जो मामला है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। चूंकि मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है इसलिए स्वाभाविक है कि हाई कोर्ट कोई डिसीजन नहीं देगा, वो तो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ही देगा क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है। मित्रों उसने केवल एक अपना ऑब्जर्वेशन दिया है और याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की है। मित्रों आपको मालूम है कि इस इश्यू पर हम लोग काफी समय से बातें कर रहे हैं और बहुत विस्तार से बात हुई भी है, और खासकर जब समान नागरिक संहिता की जब बात हुई थी, कॉमन सिविल कोड की जब बात हुई थी, तब इस पर बहुत चर्चा भी हुई है। और मैं अपने क्लास स्टूडेंट्स को याद दिलाना चाहूंगा कि समान सिविल संहिता पर मैंने आप लोगों को, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा स्पेशल ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड किया है, जिसको मैंने एनलार्ज किया है। एनलार्ज इस सेंस में कि जब हम समान सिविल संहिता की बात करते हैं तो दिमाग में मुस्लिम समुदाय आता है, है ना, कि जहां तीन तलाक की प्रथा है और ये है वो है, हम दूसरे समुदायों को भूल जाते हैं, जबकि दूसरे समुदायों में भी ऐसी समस्याएं हैं। ये बात अलग है कि वो समस्याएं उस किस्म की नहीं है या उतनी पिक्यूलियर नहीं है या उतनी ज्यादा त्रासदायक नहीं है, लेकिन समस्याएं हैं। वहां भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कुछ चीजें दिखाई देती हैं। तो मैंने बहुत ही एनलार्ज तरीके से समान सिविल संहिता पर स्पेशल ऑडियो गाइडेंस आप लोगों को प्रोवाइड किया है। और मित्रों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब तक आप सिविल सर्विसेज में बैठ रहे हैं इस तरह के स्पेशल ऑडियो गाइडेंस को एक परमानेंट ऑडियो नोट्स मानकर अपने पास रखें और बीच बीच में उसे सुनते रहें, लेकिन अपने आप में उसे कंप्लीट न माने। कंप्लीट न माने का मतलब है, मानने का मतलब है कि जब तक, जिस डेट तक वो आपको समान सिविल संघ, ये क्या समान सिविल संहिता है, जिस टॉपिक को भी गाइडेंस में उठाया जाता है स्पेशल ऑडियो गाइडेंस में, वहीं तक ही वो होता है, उसे लगातार अपडेट करते रहने की जरूरत है। तो प्लीज डू दैट, वो आपको करते रहना पड़ेगा। तो मित्रों मैं चाहूंगा कि एक अच्छा अवसर है जबकि आप इसे एक बार फिर से सुने। मित्रों एक बहुत आपको अद्भुत चीज मिलेगी कि जो महिलाओं से संबंधित जो इश्यूज हैं हमारे देश में, आप अपने सिलेबस में उठा करके देखिए तो स्पेशली फोकस्ड है, और हमारे आप हमारे समाज में जो एक कमजोर वर्ग है, वल्नरेबल सेक्शन जो है, वो आपके सिलेबस में अलग से मेंशन किया हुआ है, जिसमें महिलाएं आती हैं। और आप किसी भी साल के सिविल सर्विसेज के मेंस के अनसॉल्व्ड पेपर उठा करके देख लीजिए, उसमें आपको हमेशा महिलाओं पर क्वेश्चंस मिलेंगे। इस साल महिलाओं पर क्वेश्चंस ही नहीं बल्कि बकायदे ऐसे भी पूछे गए हैं, हमेशा प्रोमिनेंटली ये क्वेश्चन होता है, आपको इसे थोड़ा सा विस्तार से जानना होगा। मैं यहां आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, और वो ये कि देखिए कि महिलाओं का इश्यू कोई आज का ही इश्यू नहीं है। हमारे जब जो संविधान निर्माता थे शुरू से इस वर्ग के बारे में बहुत अधिक संवेदनशील थे। गांधी जी, आपने देखा कि आप देखिए कि आपके सीधे सीधे इस बार के मेंस के फर्स्ट पेपर में ये पूछा गया है, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी के आने के बाद महिलाओं की हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका रही है, आप देख रहे हैं। तो चूंकि महिलाओं की भूमिका स्वतंत्रता आंदोलन में भी थी तो स्वाभाविक है कि संविधान सभा उस पर विचार कर रही थी। और आप हमारे संविधान की खासियत देखिए कि संविधान के तीनों हिस्सों में महिलाओं की बात कही गई है, तीनों हिस्सों में। फंडामेंटल राइट्स को उठा करके देखिए, उसके अनुच्छेद 15 में जो समानता का अधिकार है, उस समानता का अधिकार महिलाओं से भी जुड़ा हुआ है। चलिए आपने अगर मूल अधिकार में कह दिया तो बात खत्म हो गई, लेकिन जब आप मूल कर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जाते हैं तब फिर आप यही बात करते हैं, जबकि मूल अधिकार में आप कह चुके हैं। आप नीति निर्देशक तत्व में आप देखिए कि अगर आप अनुच्छेद 38 देखेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करना, इनको समाप्त करना। दोस्तों इसमें जो प्रतिष्ठा शब्द है ये कहीं ना कहीं तीन तलाक से जुड़ा हुआ है कि आपको इसे खत्म करना होगा। और मजेदार बात यह है कि मूल अधिकार में भी मेंशन किया गया, फिर नीति निर्देशक तत्वों में भी मेंशन किया गया, और बाद में जब 42nd अमेंडमेंट के 1976 में जब मूल कर्तव्यों की बात की गई, जब फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई तो फंडामेंटल ड्यूटीज में भी इसको डाल दिया गया। मतलब सोच करके देखिए इसकी इंपॉर्टेंस इससे पता लगती है। जो अनुच्छेद 51 है, 51 में 10 ओरिजिनली 10 थे, 12 उसमें 11वां फिर उसमें ऐड किया गया है जो बच्चों को शिक्षा देने से संबंधित है। हमारे मूल कर्तव्य अब 11 है, उसका जो पांचवा मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का, दोस्तों आपको यह अनुच्छेद याद हो जाने चाहिए क्योंकि महिलाओं से संबंधित टॉपिक है और ये आपके लिए सिविल सर्विस के लिए बहुत जरूरी, सारे अनुच्छेद रट जाने चाहिए जो मैं भी आपको बता रहा हूं। अनुच्छेद 51 के 5 में लिखा गया है, साफ कहा गया कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। आप देख रहे हैं तीनों में मेंशन किया गया, इसी से समझ में आता है कि यह मामला शुरू से कितना संवेदनशील रहा है और स्पेशल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के संदर्भ में। मित्रों मैं यहां आपसे केवल एक छोटे से मुद्दे पर बात करना चाहूंगा, खासकर महिलाओं का जो मुद्दा है। मैं जानता हूं कि जब आप युवाओं से बात कीजिए या पुरुषों से बात कीजिए, यहां तक कि कुछ महिलाओं से भी बात कीजिए तो वो पुरुषों की भाषा में ही बात करती हैं, मतलब जो पुरुष चाहते हैं वही महिलाएं भी चाहती हैं। यह है क्या दोस्तों, सच पूछे तो महिलाओं के बारे में जब पुरुष सोचते हैं या जो ट्रेडिशनल महिलाएं सोचती हैं वो अपनी परंपरा से हटकर सोच ही नहीं पाते, नयापन उनके दिमाग में कुछ आता ही नहीं। मैंने अपने दादा और दादी का जीवन देखा, मैंने अपने माता और पिता का जीवन देखा, फिर मैंने अपने चाचा ताऊ या बड़े भाई का जीवन देखा, वही देखा है और उसी जीवन को मैं फॉलो कर रहा हूं। मुझे लगता है कि नहीं, इसी से सब कुछ व्यवस्थित हो रहा है। महिलाओं को उस तरह की अगर आजादी दे दी गई तो बवंडर हो जाएगा, क्योंकि हमारे कथा कहानी में भी कहा जाता है कि महाभारत जो है ना वो द्रौपदी की वजह से हुआ और जो राम और रावण में युद्ध हुआ वो सीता की वजह से हुआ। इस तरह की बातें कह दी जाती हैं और हमारी अवचेतना में इस कदर बैठ जाती हैं वो अंदर जाकर के कि महिलाओं के लिए सम्मान का भाव, उनकी स्वतंत्रता की बात करने की बात तो दिमाग से उड़ी जाती है। लगता है कि अगर सच में ऐसा कुछ कर दिया गया तो बवाल आ जाएगा, अराजकता फैल जाएगी और फिर कौन अपने अधिकार को छोड़ना चाहता है? पुरुष अपने अधिकार को नहीं छोड़ना चाहता। आप अगर लेकिन अगर आप पूरे के इतिहास के विकास में जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि हमारा शुरू का इतिहास क्या रहा है। जिस हम भारतीय परंपरा की बात करते हैं उस भारतीय परंपरा में महिलाओं की क्या स्थिति रही है, तब आपको एक नया दृश्य दिखाई देगा कि नहीं, हम ओरिजिनली तो ये थे और आज हम ये हो गए हैं। तो मित्रों यहां जो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं वो सिर्फ इस बात का कि आप अगर महिलाओं के बारे में कुछ सोचना चाह रहे हैं, महिलाओं पर पूछे गए प्रश्नों के जवाब देना चाह रहे हैं, तो प्लीज ये जो ट्रेडिशनल माइंड है, जो एक परंपरागत दिमाग है जो हजारों साल से हमारे दिमाग में फ्लॉपी की तरह डाल दिया गया है और वही आवाज हमें सुनाई पड़ती है जो उसमें रिकॉर्डेड है, जब तक आप इससे ऊपर नहीं उठेंगे तब तक आपको अपनी आवाज सुनाई नहीं देगी, तब तक आप कुछ नया चिंतन लेकर नहीं आ सकेंगे। नो डाउट मित्रों कि जब हम विमेन लिप की बात करते हैं तो जहां विमेन लिप की स्थितियां आ गई हैं वहां अलग तरह की समस्याएं हैं। वेस्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहां फैमिली ट्रेडिशंस टूट रही हैं, तलाक की संख्या बढ़ रही है, परिवार नामक संस्था कमजोर हो गई है। लेकिन आप इसी आधार पर महिलाओं के विपक्ष में जाके नहीं खड़े हो सकते कि उन्हें आजादी देना, बराबर का हक देना, समान अवसर उपलब्ध कराना गलत होगा। वहां जो संकट है, प्लीज नोट इट डाउन, इसे समझिए, क्योंकि मैं वेस्ट की सोसाइटी को मैंने देखा है, वेस्ट लिटरेचर भी मैंने बहुत पढ़ा है, वेस्ट की फिलॉसफी भी कमो वेस्ट ठीक ही ठाक जानता हूं। वहां का जो संकट है वो विमेन को लिबरेट करने का संकट नहीं है, जो फैमिली का जो संकट है, वहां का जो मूल संकट है वह उनकी अपनी फिलॉसफी में है। जो उनकी जो मूलभूत फिलॉसफी है, जो दर्शन शास्त्र है, वो दर्शन शास्त्र ही कुछ ऐसा है कि अगर विमेन को लिबरेट नहीं किया जाता तब भी स्थिति इससे बेहतर नहीं होती। उनका पुराना इतिहास मौजूद है, वहां भी स्थिति कोई इससे बहुत अच्छी नहीं रही है। ऐसा नहीं कि आज की जो स्थिति उसके लिए विमेन लिव जिम्मेदार है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ फिलॉसफी में नहीं था, और भारतीय फिलॉसफी तो जो इतनी डेमोक्रेट हो, जो आपको अपना ईश्वर तक गढ़ने की आजादी देता हो, वो विमेन को परतंत्र बनाए रखने की आजादी कैसे दे सकता है? वो अपनी महिलाओं को आजादी नहीं देगा? जिससे वो जन्म लेता है क्या उससे वो स्वतंत्र नहीं करना चाहेगा? मित्रों, कुछ नए तरीके से सोचने की कोशिश कीजिए, और प्लीज ड्रॉप योर ट्रेडिशनल माइंड। आप अपने जो ये जो परंपरागत जो दिमाग है इसको थोड़ी देर के लिए ड्रॉप करेंगे तभी उसमें कुछ नई चीज आ सकेगी। अदरवाइज बहुत मुश्किल है कि आप उस परंपरा के खिलाफ जाकर कुछ सोच सके। नो डाउट इसके लिए आपको अंतर संघर्ष से गुजरना पड़ेगा, और मुझे लगता है मित्रों की अंतर संघर्ष से गुजरा जाना ही चाहिए। तो दोस्तों, ये आज के न्यूज एनालिसिस के बारे में था। जहां तक न्यूज़पेपर्स का सवाल है मित्रों, आज मैं आपको काफी न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड कर रहा हूं, क्लिपिंग्स हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में तीन तलाक को लेकर के एक बहुत अच्छा एडिटोरियल कमेंट है, आप उसको देख लीजिएगा। दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा आर्टिकल मैं प्रोवाइड कर रहा हूं जो स्टीफन हॉकिंग्स का है। स्टीफन हॉकिंग्स ने अभी कुछ लिखा था अंग्रेजी अखबार में, उसको हिंदुस्तान ने छापा है, प्लीज इसको जरूर पढ़िएगा, ये बहुत ही खूबसूरत पीस है। एक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं मित्रों हिंदी सिनेमा में जयललिता जी के योगदान को लेकर के, इसको राजदीप सरदेसाई जी ने लिखा है, दैनिक भास्कर में ये प्रकाशित है, और बहुत अच्छा आर्टिकल। इसमें इन्होंने लिखा है कि साउथ में एन टी रामा राव हुए, एम जी रामचंद्रन हुए और जयललिता हुई, जो फिल्म स्टार थी, और इसके बाद उन्होंने इतने ऊंचे राजनीतिक पद प्राप्त किए और बदलाव भी लाने में सफल रहे वो, लेकिन हमारे जो भारतीय जो हमारे हिंदी बेल्ट के जो स्टार हैं, हिंदी के जो स्टार हैं, वो ऐसा क्यों नहीं कर सके, जबकि बहुत से हिंदी के फिल्म स्टार्स सिनेमा में आए। इसकी बहुत ही खूबसूरत एनालिसिस है, चूंकि वो सीधे सीधे पॉलिटिक्स की बात करती है, हमारी पॉलिटी की बात करता है ये आर्ट, इसीलिए मैं ये आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं आपको इसलिए नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं कि सिनेमा के ऊपर है ना मित्रों। तो अब मैं न्यूज पेपर्स की क्लिपिंग्स को यहीं समाप्त करता हूं और सीधे आता हूं मित्रों अब ईमेल पर। ईमेल लिखने वाले अपने सभी दोस्तों के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, उनके प्रति बहुत आभारी भी हूं। और मित्रों, मुझे दो मेल प्राप्त हुए, एक शर्मिला कुमारी की है जालंधर से, एक एसपी यादव के मथुरा से, ये दोनों हमारे फिफ्थ बैच के स्टूडेंट रहे हैं, और इन्होंने अपने परिवर्तन के बारे में लिखा है कि किस तरीके के परिवर्तन ये अब महसूस कर रहे हैं। आप लोगों की जो भाषा है उस भाषा के आधार पर मैं आप लोगों की ईमानदारी को महसूस कर सकता हूं, और कि आप लोगों ने सच में कितनी गहराई में उतरने के बाद अपनी बातों को कहने का फैसला किया है। तो शर्मिला और एसपी यादव, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि वह आप लोगों को आपके सफलता की मंजिल तक पहुंचाने में आपकी मदद करें। तो मित्रों, इनके साथ ही मैं कुछ और स्टूडेंट्स के नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने मेल भेजे हैं। उसमें है प्रियंका, हनी सिंह, डॉक्टर हरि कृष्ण आर्य अल्मोड़ा उत्तराखंड से, के ध्रांगू द्वारका से, रितेश नायक महासमुंद छत्तीसगढ़ से, पीयूष कुमार सिंह, सूर्यपाल सिंह जयपुर से, रजिया इलाहाबाद से, पुष्पा तिवारी, रवि शंकर वर्मा और गुरमीत सिंह मान चंडीगढ़ से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब आज का यह डेली ऑडियो लेक्चर समाप्त होता है। मुझे लग रहा है कि चूंकि यह गैप जो हमेशा होता रहा उससे एक दिन अधिक है, तो आज मेरी शुभकामनाएं भी हमेशा से डेढ़ गुनी आप सबके लिए ज्यादा हैं, और मुझे यकीन है कि मंगलवार को जब हम लोग फिर मिलेंगे तब तक आप लोगों की ऊर्जा भी पहले की तुलना में डेढ़ गुना अधिक हो चुकी होगी। और मित्रों, अब इसी के साथ ही मैं चाहूंगा कि 3 दिनों के लिए मेरा अभिवादन हृदय से आप सब स्वीकार करें। अब इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।